सदाकार हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला।
जो पीछे बैठे हैं और पट पे आके बैठ सकते हैं, वो जरूर आए। चाहे यूथ है जो बैठ सकते हैं, थोड़े बहने भाई भाई लोग भी जो नीचे बैठ सकते हैं, वो दो लाइन भाई लोग भी बना सकते हैं। ओम शांति। आज हमारे बीच में वैद्यनाथ शिव से प्राप्त ज्ञान औषधियों से संपन्न तन और मन दोनों को स्वस्थ बनाने वाली आध्यात्मिक डॉक्टर पधारी है। ऐसी हमारी डॉक्टर सविता दीदी जी का हम सभी एक हाथ की ताली से स्वागत करेंगे। अल्प आयु से ही आपका मन समाज सेवा की भावनाओं से ओतप्रोत था। वर्ष 1974 में मात्र 9 वर्ष की आयु में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई है। वर्ष 1985 में आपने प्रथम बार अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात की। बाबा से मिली प्रेरणाओं का अनुसरण करते हुए अपने लौकिक पढ़ाई MBBS पूर्ण करने के बाद वर्ष 1989 से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित कर दिया। लगभग 10 वर्ष ग्लोबल हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर के रूप में आपने अपनी विशेष सेवाएं दी। फिर वर्ष 2000 से 2007 तक विद्यालय की पूर्व मुख्य प्रशासिका परम श्रद्धेय आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी के स्वास्थ्य की देखरेख हेतु व्यक्तिगत चिकित्सक के तौर पर उनके अंग संग रहने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपने दादी जी की बहुत सेवाएं की। साथ साथ वर्ष 2001 से राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की महिला विंग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में भी आप सेवाएं दे रहे हैं। आपने भारत के अतिरिक्त यूके, यूएसए, जापान, रशिया, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, थाईलैंड आदि अनेक देशों में बाबा के ज्ञान की सुंदर सुवास फैलाने की सेवाएं की है। आप एक प्रखर वक्ता है। आप लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में भी एजुकेट करते हैं और मेरा भारत स्वस्थ भारत अभियान का आप एक हिस्सा रहे। आपने अनेक नेशनल एवं इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया है। नारी सशक्तिकरण करते हुए आपने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारी सुरक्षा हमारी सुरक्षा का नारा देते हुए सामाजिक समानता आदि विषयों पर राष्ट्रीय स्तर के अनेक कार्यक्रमों को कोऑर्डिनेट किया है। ऐसे शांत शीतल मधुर एवं सरलचित आत्मा को अपने बीच पाकर हम स्वयं को गर्वित महसूस कर रहे हैं और आज आपका विषय है प्योरिटी की पर्सनालिटी। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं दीदी जी से आग्रह करती हूँ कि आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी।
ओम शांति। ओम शांति। आप सभी पांडव भवन में भर्ती कर रहे हैं तो आप में से कुछ भाई बहनों को तो पहली बार ये चांस मिला होगा पांडव भवन में रहने का। तो कौन कौन ऐसे हैं जो पहली बार, मेजॉरिटी पहली बार ही हैं, क्योंकि आजकल तो पांडव भवन में रहते ही नहीं है, शांतिवन में ही अधिकतर रहना होता है। तो जैसे कि विषय है आज का प्यूरिटी की पर्सनालिटी, तो हमारा ब्राह्मण जीवन का पहला नियम ही है पवित्रता, या ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, आधार है पवित्रता, नवीनता है ये ब्राह्मण जीवन की, अलौकिकता है। और जब से ये बाबा का कार्य शुरू हुआ, परमात्मा शिव का अवतरण हुआ, तब से ओम मंडली के समय से ही ये पवित्रता की धारणा है ना, घर गृहस्थ में रहते हुए भी पवित्र रहना है, ये क्रांति जिसे कहेंगे ये शिव बाबा ने शुरू की। बाकी सन्यासी तो हैं ही भारतवर्ष में, जो घर बार का त्याग करके और पवित्र रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। तो शुरू से ही पवित्रता के कारण ही यज्ञ में फिर विघ्न आए। कई वहां सिंध में कहते थे बाबा को, बाबा सब कुछ बहुत अच्छा है, बस एक चीज हटा दो, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है और ये जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाला है। तो फिर बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा ये मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं तो खुद समझ रहा हूँ। तो बाबा तो खुद घर गृहस्थ वाले थे, तो ये शिव बाबा का ही आह्वान था और आज भी पवित्रता के कारण विघ्न आते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, जब ज्ञान में चलते हैं तो फिर शुरू में जब ये नियम धारणा का पता चलता है तो पहले जैसा हो सकता है कि इतना जो बहुत ज्यादा सताया गया माताओं बहनों को इतना आजकल नहीं होता है, लेकिन फिर भी विघ्न तो आते हैं पवित्रता के कारण। लेकिन पवित्रता की ही महानता है ना, बाबा ने कहा कि जो आज मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा होती है, भले वो जड़ चित्र हैं, लेकिन उन जड़ चित्रों का भी मान चैतन्य से ज्यादा है, क्योंकि वो आत्मा और शरीर दोनों रूप में पवित्र रहे, जो देवी देवता रहे। आज पूरे कल्प में हम आत्माएं जो अभी वर्तमान में ब्राह्मण बने, बाबा कहते हैं श्रेष्ठ गायन और पूजन योग्य बनते हैं, है ना। सुनते हैं ना कई बार बाबा सुनाते हैं हमको कि सतयुग त्रेता में तो देवी देवता हैं ही, पूज्य हैं ही, लेकिन द्वापर युग में भी जब हम पुजारी बनते हैं और हमारे चित्रों की पूजा शुरू होती है तो सर्वश्रेष्ठ विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा होती है, पवित्रता की विधि पूर्वक होती है ना। और भी फिर धर्म नेता हुए, है ना, धर्म स्थापक हुए, अभिनेता हैं, राजनेता हैं, और भी दुनिया की महान आत्माएं हैं, उनका गायन होता है, उनके स्टैचू जरूर बनते हैं, लेकिन देवताओं जैसी पूजा किसी की भी नहीं होती, यहाँ तक कि धर्म पिताओं की भी नहीं होती, जो हर कर्म की पूजा, उनके जगाने की पूजा, उनका श्रृंगार करना, उनको भोग लगाना, उनका शयन करवाना, देखा है किसी ने मुख्य मंदिरों में ये एक एक कर्म की पूजा होती है, आरती समय समय पर आरती होती है, किसने देखा है ऐसी पूजा, हाथ उठा सकते हैं, देखो काफी लोगों ने देखा है ना? तो बाबा ने कहा कि इतना जो आपका सम्मान और श्रद्धा है वो पवित्रता की वजह से ही है, और वो भी वर्तमान में हम जितना पवित्र बने उतनी ही प्रारब्ध हमें सतयुग में भी मिलती है, और भक्ति में भी जो यादगार बनते हैं वो भी उसी प्रमाण बनते हैं। तो हमारी जो पवित्रता है, संपूर्ण पवित्रता, माना केवल ब्रह्मचर्य का पालन करना नहीं, वो एक स्टेप है, माना पहला कदम है ब्रह्मचर्य का पालन करना, और उसके आगे बाबा कहता है सर्व विकारों पर विजय पाना, केवल काम विकार पर नहीं लेकिन सर्व विकारों पर विजयी बनना, और उससे भी आगे विकारों के सूक्ष्म रूप अंश वंश को भी जीतना। तो मोटे रूप में चलो हम जीत भी लेते हैं विकारों को, लेकिन उसके महीन रूप को कई बार नहीं समझ पाते तो उसके वश हो जाते हैं। और तीसरा, स्वप्न में भी किसी आत्मा के प्रति हमारी दृष्टि वृत्ति न जाए, या किसी भी आत्मा के वश आवेश में आकर या क्रोध के वश ईर्ष्या के वश कर्म ना हो, क्योंकि क्रोध भी तो विकार है ना, तो स्वप्न में भी ना हो। फिर बाबा कहता है दिनचर्या में भी अलबेलापन ना हो, दिनचर्या जो ब्राह्मण जीवन की है अमृत वेले से रात तक एक्यूरेट चले, अगर उसमें अलबेलापन आ जाता है, माना कभी किया कभी नहीं किया, ऐसे ही करते हैं कभी कभी अमृत वेला अच्छा हो गया कभी किया ही नहीं, फिर कभी मुरली सुन ली कभी नहीं सुनी, मिस भी हो गई, भोजन का भी नियम पूरी तरह से पालन नहीं कर पाते, जो भी कारण बने मानो, तो ये क्या कर रहे हैं हम, जो हमारी नियम दिनचर्या अगर उसमें भी हम ऊपर नीचे करते हैं तो वो भी संपूर्ण पवित्रता नहीं है। और आगे बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प अगर चलता है तो वो भी अपवित्रता है। अगर कोई भी बात को लेकर के हमारे मन में क्यों क्या आ जाता है, व्यर्थ संकल्प कब चलते हैं, जब हम उलझन में चले जाते हैं, जब हम थोड़ा किसी बात को लेकर परेशान हो जाते हैं, तो दुख अशांति अगर आ रही है, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो अगर दुख अशांति हमको अनुभव हो रहा है किसी भी कारण से, तो भी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इम्प्यूरिटी है। तो हम चेक कर सकते हैं कि हम कौन से स्टेप पर हैं ना? संपूर्ण पवित्रता तक पहुंचना है, लक्ष्य क्या है, संपूर्ण पवित्र हमको बनना है। तो निश्चित है कि अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो उस लेवल पर तो हम अभी पहुंचे नहीं हैं। खासकर व्यर्थ संकल्प में बहुत फेल होते हैं, और बातों को जीत भी लें लेकिन व्यर्थ संकल्प को तो कई बार समझ ही नहीं पाते हैं कि व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं। तो हमारी जो प्यूरिटी है वो परमात्मा विधि से है। दुनिया में भी जैसे कहा लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो वो भी कोई विधि अपनाते हैं, जो सन्यासी आदि भी हैं। इवन दुनिया में सन्यासी नहीं बनते तो भी कई लोग शादी नहीं करते, तो अपने हिसाब से पवित्र रहते हैं। और सन्यासी जो हैं वो कई बार स्त्री को मां मानते हैं, मां के रूप में माना, जैसे देवियों की पूजा करते हैं तो मां के रूप में देवी की पूजा होती है। जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, उन्होंने अपनी पत्नी को हमेशा मां कहा, शारदा मां कहते थे वो उनको, है ना। ऐसे विवेकानंद उनके शिष्य थे तो उन्होंने भी इस रूप में ही, स्वामी नारायण वाले हैं उनके अपने नियम है, वो स्त्री का मुंह ही नहीं देखेंगे, माना हर एक की अपना अपना तरीका है। लेकिन बाबा की विधि क्या है, बाबा ने क्या सिखाया हमको, क्या सिखाया, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। और कौन सी आत्मा हूं, मैं आदि अनादि शुद्ध पवित्र श्रेष्ठ आत्मा हूं। मेरा निजी स्वभाव ही पवित्रता है, तो मेरा स्वभाव ही पवित्रता है, मैं पवित्र स्वरूप हूं। तो स्मृति से समर्थी आ गई, क्योंकि मैं आत्मा अनादि स्वरूप यानी परम धाम में भी पवित्र हूं, और आदि स्वरूप माना सतयुग त्रेता में भी हम कौन है, पवित्र देवी देवता है। तो दो युग तक हम पवित्र रहे, तो बाबा ने हमें ये स्मृति दिलाई, तो हमें समझ में आ गया कि पवित्रता हमारे लिए मुश्किल नहीं है, ये तो मेरा स्वभाव है। और दूसरा बाबा ने क्या स्मृति दिलाई, कि हम परमात्मा शिव डायरेक्ट परमात्मा के बच्चे हैं, और जब हमने परमात्मा से योग लगाया तो वो शक्ति हमें मिली, फिर हमने हिम्मत रखी और बाबा की मदद, हिम्मते बच्चे मददे बाप। और इसके कारण इस घोर कलयुग में भी, आज का समय ऐसा ही है ना कि लोग कहते हैं असंभव है, लेकिन बाबा के बच्चों ने क्या किया, संभव कर लिया, नहीं किया। घर गृहस्थ में रहते हुए, सन्यासी भी कहते हैं ना, घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना असंभव है, और हम क्या कहते हैं, सहज है, मुश्किल है, जो समझते हैं सहज है। आप तो सब प्रवृत्ति वाले ही बैठे ना, मेजोरिटी तो सहज है, वो हाथ उठाएं। तो कैसे सहज हो गया, क्योंकि बाबा ने हमारी स्मृति वृत्ति ही बदल दी। तो स्मृति में आ गया मैं आत्मा हूं, आत्मिक दृष्टि वृत्ति हो गई, दूसरों को भी हम क्या देखते हैं, आत्मा। आत्मिक दृष्टि वृत्ति ही पवित्र दृष्टि वृत्ति है, देह से ही ऊपर उठा दिया बाबा ने हमको, देह की सीमाओं में हम हैं ही नहीं। अगर हम देही अभिमान में आ गए तो प्यूरिटी का पालन नहीं कर पाएंगे, तो दैहिक आकर्षण हो सकता है, क्योंकि खुद ही देह अभिमान में, तो दूसरों की देह पर भी नजर जाती है। लेकिन जब हमारी आत्मिक दृष्टि वृत्ति है तो वो शुद्ध दृष्टि वृत्ति है। आत्मा पवित्र स्वरूप है, जैसे बताया, आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है। तो आत्मा का तो स्वरूप ही जो है वो इतना ऊंच श्रेष्ठ सतोगुणी है। तो वो स्मृति में अगर हम हैं तो इम्प्यूरिटी आ नहीं सकती, पर उस स्मृति से हम विस्मृति में आए तो हो सकता है। और इसीलिए हमारी जो प्राप्ति है वो भी बहुत ऊंची है, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा विधि से है, तो एक जन्म की प्राप्ति नहीं है। वो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो एक जन्म के लिए उनकी महानता है, है ना, भले ही वो महान आत्माएं उनके आगे भी लोग झुकते हैं, उनकी पवित्रता के आगे ही झुकते हैं, अगर सन्यासियों के आगे कोई झुकते हैं तो। एक कुमारी का भी पूजन होता है, क्यों होता है, क्योंकि वो भी पवित्र है। लेकिन हमारी पवित्रता 21 जन्मों तक बाबा कहता है पूरी चलती, भले अभी शरीर पवित्र नहीं है लेकिन फिर 21 जन्मों तक आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र होते हैं। तो इतने ऊंची प्राप्ति हमें उससे है जो डायरेक्ट परमात्मा से हम अभी पवित्रता का पालन करते हैं। तो कई भाई बहने कहते हैं कि बहन जी हम कहाँ रहते हैं इस वातावरण में, क्योंकि इसी दुनिया में हम रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा असर हम पर आ जाता है। आज तो जो देखो, जहाँ सोशल मीडिया पे देख लो, टीवी पे देख लो, न्यूज मैगजीन कुछ भी देख लो, कोई साहित्य हो कुछ भी हो, सब किससे भरा पड़ा है, देह अभिमान की दुनिया है ना, उसी से भरा पड़ा है। तो फिर कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी उसका असर आ जाता है। तो आ जाता है, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, हम कौन है, है ना, बाबा के साथ, बाबा के कर्तव्य में जिम्मेवार, यानी बाबा पतितों को पावन बनाने आए हैं, तो हम भी कौन हो गए, मास्टर पतित पावन, है ना। तो हम भी स्वयं को ही पवित्र नहीं बना रहे, लेकिन हमें और आत्माओं को भी पवित्र बनाना है, प्रकृति को भी पावन बनाना है। प्रकृति भी तो सतयुग में सतोगुणी होगी तो उसको कौन पावन बनाएगा। तो फिर अगर हम पर उसका असर आ जाता है ना, यदि कमजोर इम्प्योर वातावरण का असर हमारे ऊपर होता है, तो फिर हम मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं हुए। लेकिन हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, हमारा प्रभाव उनके ऊपर जाए, चाहे कैसे भी लोग हमारे संबंध संपर्क में आ रहे हैं, अगर मेरी दृष्टि वृत्ति पवित्र है तो हम पतित को भी पावन बनाने की शक्ति रखते हैं। हो सकता है, नहीं हो सकता है? जब बाबा हमें कहते हैं वृत्ति से वृत्ति का परिवर्तन हो सकता है, तो हो सकता है ना, तभी बाबा ने कहा। और हमारी दादियों के साथ ऐसा हुआ है, हमारी जो दादियां जब सेवा पर निकली उस समय में तो ब्रह्मा कुमारी इसको कोई जानते ही नहीं थे, आज तो खैर जानते हैं दुनिया में, लेकिन उस समय लोग सोचते थे ये बहनें रहती हैं यहाँ पर, तो कई इस तरह से गलत दृष्टि से आ जाते थे। लेकिन जब दादियां उनको मिलते थे, ज्ञान सुनाते थे, तो पूरी तरह से उनका परिवर्तन हो जाता था, क्योंकि दादियां पूरी देवी की तरह उनको नजर आते थे और उनकी वृत्ति से वो सामने वाली आत्मा की वृत्ति भी बदल जाती थी। और कैसे कितने वारिस बने, ऐसे बाबा के बच्चे बने, आए थे गलत भाव लेकर के, लेकिन बन गए देवी देवता, ऐसे कहेंगे ना। तो वो हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए, हम विश्व परिवर्तक है ना, तो हमारे संपर्क में आत्मा आकर के पावन हो जाए, उसको महसूस हो कि इनकी दृष्टि वृत्ति मेरे से बिल्कुल अलग है, हम जैसा समझते हैं ऐसा नहीं है। और फील भी होता है, क्योंकि प्यूरिटी के अपने वाइब्रेशंस होते हैं। बाबा क्यों कहता है चेहरे और चलन से सेवा, तो क्या सेवा करते हैं, वो रूहानियत होती है ना चेहरे पर, वो प्यूरिटी के वाइब्रेशंस होते हैं ना, होते हैं ब्राह्मणों के चेहरे पर कि नहीं होते, आप फील करते नहीं करते, जो समझते हैं होते हैं, वो हाथ उठाइए। तो फिर तो जब हम फील करते हैं तो दूसरे भी फील कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। तो वो हम जब दूसरों को अनुभव कराएंगे तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, चाहे कैसे भी लोग हैं, कैसा भी वातावरण है, क्या भी हमारे सामने आता है। तो बाबा जैसे कहते हैं ना, अपवित्रता की अविद्या, देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना, यानी जानते हैं, नॉलेज है, ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं है, लेकिन साक्षी होकर के ड्रामा के इन सीन्स को, क्योंकि त्रिकालदर्शी बना दिया ना बाबा ने समझ दे दी कि ये सब क्यों हो रहा है और ये अति अंत को लाने वाली है। अति पाप का घड़ा भरेगा तभी तो फूटेगा ना, तभी तो अंत आएगा। तो अब जब हमें ये नॉलेज है तो फिर हम उन अपने वाइब्रेशंस के द्वारा उसमें पवित्रता के वाइब्रेशंस देने वाले हैं। फिर प्यूरिटी माना, बाबा कहता है केवल मोटे रूप से नहीं, केवल ब्रह्मचर्य का पालन करना नहीं, लेकिन मनसा भी, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों स्तर पर। तो अगर हमें कोई आत्मा का प्रभाव पड़ जाता है ना, वैसे हम पवित्र हैं लेकिन कोई आत्मा की अच्छाई से हम प्रभावित हो जाते हैं, या कोई आत्मा के गुणों से हम प्रभावित हो जाते हैं, कोई की पर्सनालिटी से प्रभावित हो जाते हैं। अब दुनिया में अच्छे लोग भी तो होते हैं ना, थोड़ी कि नहीं होते हैं, है ना। कोई रियली देखने में सुंदर होते हैं, तो अगर हम देह अभिमान में हैं तो हो सकता है दैहिक आकर्षण हो जाएगा। देह अभिमान में नहीं है तो नहीं होगा, लेकिन अगर देह अभिमान में है तो हो सकता है कि कोई ऐसी आत्मा हमको प्रभावित करे, फिर उसकी ओर हमारा झुकाव हो जाए। और झुकाव होने का मतलब ब्राह्मण आत्माओं के लिए भी हो सकता है, बाहर वाली आत्माओं के लिए भी हो सकता है। बाहर की आत्मा, बाहर की दुनिया तो है ही देह अभिमान की दुनिया, वो तो कपड़े ही ऐसे पहनेंगे, बाल ही ऐसे बनाएंगे, मेकअप ही ऐसा करेंगे जो आप उनको ही देखो, हाँ उनकी तरफ आकर्षित हो जाओ, वो तो उनका तो लक्ष्य ही ये होता है ना। आज क्यों इतने ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं, है ना, किस लिए खुले हुए हैं, तो वो तो दुनिया ही अलग है, तो उसकी तो बात छोड़ो, उससे तो हम निकल आए, निकल आए नहीं निकल आए। माताएं जाती हैं ब्यूटी पार्लर में, हाँ क्या कहेंगे, हंस रहे माना, कोई कोई जाते हैं, तो हमें जाने की जरूरत है। बाबा कहते हैं सतयुग में नेचुरल ब्यूटी होती है, अभी तो मेकअप की ब्यूटी है सारी, है ना। तो हमें जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बाबा ने हमें कौन सी ब्यूटी दे दी, इनर ब्यूटी दे दी। मिली कि नहीं मिली, गुणों की सुंदरता मिली है ना, सर्वगुण संपन्न बाबा बना रहा है, और उससे ज्यादा सुंदरता होती भी नहीं है। ये बाहर की सुंदरता तो थोड़े समय की होती है, जैसे ही व्यवहार में आना शुरू होते हैं पता चलता है तो वो तो भूल ही जाते हैं, फिर कौन सी सुंदरता समझ में आती है। तो ये तो सब जानते हैं ना प्रैक्टिकल लाइफ में, कि कौन सी सुंदरता अविनाशी है, वो गुणों की सुंदरता ही अविनाशी है। तो इसीलिए बाबा ने उससे हमें कर दिया, लेकिन इस पर भी प्रभावित नहीं होना है। कि बाबा कहता है किसी के गुणों पर आप प्रभावित हो जाओ, विशेषताओं पर, इसकी सेवा बहुत अच्छी है, इसका स्नेह सहयोग देना बहुत अच्छा है, पालना मतलब होता है ना, दिल ले लेते हैं, हमारी बात सुनते हैं, हमसे विचार मिलते हैं, ये हमको समझते हैं। कोई अच्छा कैसे लगता है हमको, किन बातों से अच्छा लगता है, इन्हीं बातों से हमें कोई अच्छा लगता है तो फिर उनसे मिलना पसंद करते हैं, बात करना पसंद करते हैं, उनके साथ बैठना पसंद करते हैं, फिर हो सकता है कि धीरे धीरे हम उनके लगाव में आ जाए। क्योंकि बढ़ता है ना ये, तो जैसे ही बढ़ेगा आप थोड़ा भी एक्स्ट्रा में जाएंगे। बाबा कहते हैं अच्छा लगता है, वो कोई गलत बात नहीं है, जो अच्छा है वो तो अच्छा लगेगा, लेकिन सब अच्छा लगे, ये ही अच्छा लगता है माना, एक्स्ट्रा स्नेह में आ जाते हैं तो बाबा कहते हैं दाल में काला है, आपको वहीं सावधान हो जाना है कि मुझे एक्स्ट्रा में नहीं जाना है। तो लगाव में बदला, उसकी निशानी क्या है, किसी भी आत्मा के लगाव में हमारा मन चला गया, यानी मन बार बार उसकी तरफ जाता रहेगा, आप चाहते हुए भी उसकी याद से अपने आप को दूर नहीं कर पाएंगे, और योग में वो विघन रूप बनेगा। आप बैठेंगे योग में बाबा को याद करने, और याद कौन आएगा, लगाव वाली आत्मा खींचेगी ना, उसकी बातें याद आएंगी, या जो भी, जिस भी कारण से आप उससे प्रभावित हैं वो बातें आपको याद आएंगी। तो बाबा से योग टूटा माना, जो बाबा से हमें प्यार का अनुभव होना चाहिए, शक्ति का अनुभव होना चाहिए, जो बाबा से हमें सुख मिलना चाहिए, वो नहीं अनुभव होगा। फिर कहेंगे योग तो लगाते हैं लेकिन योग तो लगता नहीं, क्योंकि किससे लग गया योग, किसी देहधारी से योग लगा हुआ। इसलिए रोज रोज मुरली में बाबा क्या कहता है, कोई साकार मुरली ऐसी नहीं होती जो बाबा ये नहीं कहता कि अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, होती है कोई साकार मुरली, तो मुझे याद करो यानी मेरे सिवाय कोई भी देह और देह का संबंधी याद ना आए, अपनी देह भी याद ना आए। बाबा तो यहां तक भी कहते हैं कि अपनी देह भी हमें याद नहीं आनी चाहिए। तो सर्व संबंध एक बाबा से, यानी मेरी कंपनी और कंपानियन एक बाबा है, ये हमारी ब्राह्मण जीवन की पवित्रता है। पवित्रता का आधार है सर्व संबंध बाबा से, एक बाबा दूसरा ना कोई। तो ऐसे नहीं कि हम संबंधों में नहीं रहते, ये तो बाबा ने नहीं बोला कि छोड़ दो, लेकिन कैसे रहना है, कैसे रहना है, नष्ट मोहा, यानी सब कुछ तेरा, मेरा नहीं, ये मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं, ये मेरा मेरी संपत्ति, मेरा 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 जिसको हम कहते हैं वो सब मेरा मेरा क्या है, किसका है, बाबा का। तो ट्रस्टी बनकर रहना, जो आज भी मुरली में था, कमल फूल समान रहो, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए भी कैसे रहना है, पवित्र रहना माना कमल फूल समान। तो रहते हैं वही संसार में, वही गृहस्थी में, लेकिन भाव और भावना पूरी तरह से बदल गई। बाबा ने मुझे निमित्त यहाँ सेवा में रखा है, इन आत्माओं की सेवा के हम निमित्त हैं। मेरा कौन है, मेरा कौन है, एक शिव बाबा, जो कहा ना मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, वो मेरा बाबा ही, उसमें ही हमारी बुद्धि है, उसमें ही हमारी लगन है, और बाबा से ही हमारा सच्चा प्यार है। ऐसे नहीं औरों से प्यार नहीं है, लेकिन वो वाला प्यार नहीं, अटैचमेंट वाला प्यार नहीं, शुद्ध स्नेह, आत्मिक स्नेह, रूहानी स्नेह, वो हर आत्मा के प्रति है। लेकिन दूसरा स्नेह में बाबा कहता है कि हमेशा बाबा को बीच में लाओ, कि अगर कोई आत्मा अच्छी है, हमें अच्छी लगती है ना, जो अच्छे हैं वो अच्छे ही लगेंगे, लेकिन वो अच्छाई देने वाला कौन, कौन, बाबा ने ही अच्छा बनाया ना। आज ब्राह्मण भी अगर अच्छे हैं, गुणवान हैं, तो किसने बनाया? आज कोई अच्छी सेवा करता है तो किसने सिखाया? पहले हमें ये सब अक्ल थी क्या? इतना ज्ञानवान, बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, तो ज्ञान भी किसने दिया? बाबा ने दिया ना, ये ज्ञान अपने आप थोड़ी आ गया, तो देने वाला तो बाबा है ना। तो हमेशा कौन याद आना चाहिए? बाबा ही हमें याद आए, तो वो पवित्रता। फिर कई कहते हैं अरे बाबा तो निराकार है, कल की मुरली में भी था ना, ज्योति बिंदु को कैसे याद करें, ज्योति बिंदु याद करना ही मुश्किल है, अब वो निराकार से हमें तो कुछ अनुभव ही नहीं होता है, है ना। तो ये प्रश्न है किसी का, अनुभव होता है नहीं होता? आप में से जो समझते हैं बाबा को हम जब भी याद करते हैं हमें अनुभव होता है, वो हाथ उठाओ। अच्छा, कुछ कुछ ने नहीं उठाया, मतलब अनुभव नहीं होता है बाबा को याद करने से। हाँ, आप ये दो चार माताएं बैठी सामने, हाथ नहीं उठाया आपने, पीछे भी कईयों ने नहीं उठाया, तो क्या कहेंगे, योग में अनुभव होता है नहीं होता? जो समझते निराकार को याद करना हमारे लिए सहज है, कल मुरली में कहा ना बाबा ने, बिंदु को कैसे याद करे बाबा, बिंदु को याद करना मुश्किल होता है, वो हाथ उठाओ। सब क्यों नहीं उठा रहे? सबको याद करना सहज नहीं है। अच्छा चलो, बिंदु रूप याद करना, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, बिंदु रूप याद करना मुश्किल लगता है, तो क्या ब्रह्मा बाबा अव्यक्त रूप में याद करते हैं नहीं करते, वो हाथ उठाओ। ब्रह्मा बाबा को याद कर सकते हैं अव्यक्त रूप में? अच्छा, वो तो कर सकते हैं, तो चलो उनके माध्यम से ही, हाँ, ब्रह्मा बाबा की भ्रकुटी में शिव बाबा को देखते हुए हम बाबा को याद करें, लेकिन याद किसको करना है? एक बाबा को ही करना है। फिर कहते हैं कि बाबा से हम बात करते हैं, पता नहीं बाबा ने सुना कि नहीं सुना, क्या कहेंगे, सुना कि नहीं सुना? फिर ये भी कहते हैं अच्छा सुना तो दिया, अब जवाब तो कुछ मिला ही नहीं, अब कहां जाएं भाई, जवाब तो मिला ही नहीं, तो जवाब तो मिलना चाहिए। तो फिर कहते हैं बाबा तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक कोई हमें ना इस दुनिया का भी चाहिए, जिससे हम अपने दिल की बात कह सकें, क्योंकि दिल भारी होती है कई बार, टेंशन में आ जाते हैं ना, चिंता में आ जाते हैं, तो कोई तो हो, हाँ कोई सखी सखा या जो भी साथी कोई तो हो जिससे हम अपने दिल की बात कर सकें, तो क्या कहेंगे, चाहिए कि नहीं चाहिए? बाबा ये तो छुट्टी दे देवे ना हाँ, जो समझते हैं चाहिए वो हाथ उठाओ। बड़ा मुश्किल प्रश्न है हाँ, कोई नहीं उठा रहा। नहीं चाहिए तब तो पास हो आप, क्योंकि बाबा को भी यही पसंद है। दुनिया में भी ऐसे होता है ना कि आप किसी के साथ रिलेशन में, मतलब पति पत्नी का संबंध है मानो, तो वफादारी चाहिए। अगर वो थोड़ा भी इधर उधर जाते हैं तो पसंद आता है, नहीं पसंद आता है ना। तो यहाँ भी बाबा से हमारे सर्व संबंध है, तो हम जरा भी इधर उधर जाने की कोशिश करते हैं तो बाबा को भी पसंद नहीं आता है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ना कि कभी भी हम दिल से बाबा को याद करेंगे। अगर मैंने कहा मेरा बाबा, तो बाबा हमारे लिए हाजिर है। इंसान तो फिर भी नहीं होगा कई बार, क्योंकि उसकी तो लिमिट है ना। आपको रियली जब किसी की जरूरत हो तो वो आपके साथ हो, ये कोई जरूरी नहीं है, होता ही नहीं होता। हाँ, माँ बाप को बेटे की जरूरत है, पता चला बेटा तो विदेश में बैठा है, है ना, ऐसा हो जाता है ना। जिसको आप बहुत अपना समझते हो वक्त पर, वो ही नहीं होता है, कोई दूसरे ही अपने बनते हैं आकर के फिर, है ना। तो हम कहते हैं भगवान ने आपको राइट टाइम पे भेज दिया हमारे पास, तो भी किसने भेजा, भगवान ने ही भेजा ना, ऐसे ही कहते हैं ना हम। तो इसीलिए इंसान का तो फिर भी भरोसा नहीं, लेकिन बाबा को हम कहां भी कभी भी याद करेंगे, दिल से निश्चय से याद करेंगे, और बाबा हमारे लिए ना करे ऐसा हो नहीं सकता। तो इसीलिए कभी भी संशय का अंश मात्र भी हमें नहीं आना चाहिए कि मुझे कोई चाहिए। आप बाबा के ऊपर रहेंगे, बाबा अपने आप रास्ता निकाल देगा। वो किसी इंसान को भी निमित्त, अब निराकार है मानो, लेकिन अगर वो किसी इंसान को तो निमित्त बना सकता है ना, वो किसी के द्वारा करा देगा, लेकिन हमारा काम जरूर बाबा करा देगा, और हमको महसूस भी होगा कि बाबा के कारण ही ऐसा हुआ। तो इसीलिए संपूर्ण पवित्रता यही है कि कभी भी किसी भी देहधारी के प्रति हमारा आकर्षण न जाए, और अगर जाता है तो बाबा ने उसके लिए भी बहुत बहुत मूल्यों में बाबा ने ये बातें कही हैं कि मानो किसी के प्रति दृष्टि वृत्ति चंचल होती है, वैसे हम पवित्र हैं लेकिन किसी में हमारी बुद्धि जाती है, जिसको बाबा कहते हैं सिविल आई या क्रिमिनल आई। तो सिविल आई माना आत्मिक दृष्टि, और क्रिमिनल आई माना किसी की देह में बुद्धि गई तो वृत्ति चंचल हुई मानो। तो बाबा कहता है ये महा 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 पाप है। ब्राह्मण बनने के बाद अगर किसी भी आत्मा में मेरी बुद्धि जाती है, तो बाबा कहता है और अगर ब्राह्मण आत्मा में जाती है मानो, तो वो कुल कलंकित है। क्योंकि हमारा संबंध कौन सा है, अभी भाई भाई का संबंध है। भाई बहन भी बाबा कई बार कहते हैं कि भाई बहन में भी कई बार हल्के रूप में ले लेते हैं, लेकिन अभी हम वैसे तो ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भाई बहन है बाबा कहता है, और आत्मा रूप में हम सब, चाहे मेल है फीमेल है, सब कौन है, भाई भाई हैं। तो वही हमारी दृष्टि वृत्ति होनी चाहिए। और फिर ब्राह्मण है तो बाबा कहता है बहनों को शिव शक्ति देखो, ये त्यागी तपस्वी आत्माएं हैं, देवी देवता देवियां बनने वाली है ना, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, तो ऊंची दृष्टि से देखो। भाइयों को महावीर की दृष्टि से देखो कि ये वही या हमारा ही यादगार है ना, जो आज हनुमान के दिल में कौन था, क्या दिखाते हैं कि हनुमान ने अपना दिल खोल कर दिखाया तो कौन है, राम ही बसा हुआ है। तो उनको उस नजर से देखो कि ये कौन आत्माएं हैं, इतनी श्रेष्ठ आत्माएं, साधारण नजर से देखते ही क्यों हो। तो कभी भी बाबा कहता है ऐसे अगर नजर जाती है तो अपने को दोषी समझो। कई बार क्या होता है मानो, होता है ना, किससे तो सुनते रहते हैं ना, कोई कोई थोड़ा लगाव चुकाव में आ जाते हैं, फिर उसको इशारा दिया जाता है, क्योंकि खुद को नहीं समझ आता, दूसरों को दिखाई देना शुरू हो जाता है, तो कोई ना कोई बोल देगा कि भाई ये आप जो कर रहे हो ये सही नहीं है। तो क्या कहते हैं, अरे बहन जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो सिर्फ हम बात करते हैं, हमारा कोई ऐसा भाव नहीं है। कोई मानता है? आप देखो, कोई भी आसपास कभी आपने किसी को कहा हो तो कोई मानता है कि ये गलत है? क्या कहते हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं। अभी संडे की मुरली में बाबा ने कहा ना, मैं राइट हूं, तो मैं जो कर रही हूं कर रहा हूं वो राइट है, आप गलत सोच रहे हो। तो बाबा कहते हैं कि मानो आप ऐसा जवाब देते हैं, अपना स्पष्टीकरण देते हैं, तो किसकी स्पष्टीकरण दे रहे हैं? हो सकता है नहीं भी होगा, कई बार होता है कि मन में ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप हो जाती, जैसे कहा ना थोड़ा एक्स्ट्रा में चले जाते हैं। तो अगर किसी ने इशारा दिया तो कभी भी स्पष्टीकरण मत दो। बाबा कहता है अगर आपने स्पष्टीकरण दिया तो अपनी पाप की लकीर को लंबा कर दिया, क्योंकि अगर वो बढ़ता गया, ये तो अच्छा है कि वो आपको वहीं स्टॉप कर रहे हैं, अगर वो बढ़ता गया तो वो लगाव में बदल सकता है। और कई बार तो लोग उसके कारण पुरानी दुनिया में भी चले जाते हैं, ऐसे ऐसे किस्से हुए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो फिर आपको तो उसका थैंक्स करना चाहिए। तो बाबा कहता है अगर आप कहते हो कुछ नहीं है तो उसको वहीं कुछ नहीं कर दो, फुल स्टॉप लगा दो, तो बात वहीं खत्म। जब है ही नहीं है तो बात ही खत्म ना, तो आगे के लिए उसको बढ़ाना क्यों है? अगर किसी की नजर में आया माना वो बढ़ रहा है, और फिर अगर हमने उसको खत्म नहीं किया तो बाबा कहते हैं बाद में अगर चलाया, इसको कहते हैं चलाना, तो बाद में चिल्लाना पड़ेगा। यानी धर्मराजपुरी में बाबा कहते हैं कि एक का 100 गुना दंड होता है और ऊंच पद पाने से वंचित हो जाएंगे। जो 21 जन्म की प्राप्तियों वाली मंजिल है वो टिकती नहीं अगर हमारी पवित्रता कम है। तो बाबा इस चीज को बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं। मुरलियों में भी कभी बाबा जब इसके बारे में बात करते हैं तो साधारण रीति से नहीं करते हैं। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि फिर राजाई पद पाने से आप वंचित हो जाएंगे। अगर प्यूरिटी हमारी जरा भी कम होती है तो वो ऊंच पद हमें नहीं मिलेगा। और साकार मुरली में क्या आता है? पवित्रता से गिरना माना 5 मंजिल से गिरने के समान है। सुना है कभी? 5वीं मंजिल से गिरना, और चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो। तो बाबा तो इतने कड़े कड़े शब्दों में बोलते हैं मुरलियों में, तो हमें उतना उसको सीरियसली लेकर, कहां भी अगर हमारी कमजोरी है, क्योंकि ठीक कौन करेगा, दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो क्रोध विकार है ना वो तो प्रकट हो जाता है। बाबा कहते हैं वो क्रोध वाला तो सबको समझ में आता है कि आपको गुस्सा आता है, आप गुस्से वाले हो, आप बोलकर भी गुस्सा नहीं करते तो आंखों से भी पता चल जाता है ना कि आप गुस्सा कर रहे हो, आंखों से भी दिखा देते हो। लेकिन काम विकार तो प्राइवेट विकार है, माना अपने अंदर का विकार है, तो इसीलिए हमें ही पता है कि हम इसमें कितने शक्तिशाली हैं और कितने हम इसमें कमजोर हो जाते हैं। तो हमें ही अपने आप को स्व परिवर्तन करके अपनी स्टेज को ठीक करना है। और बाबा ने हमें सब विधियां बताई हैं, बाबा की विधियां तो इतनी पावरफुल हैं कि अगर हम बाबा की बताई हुई श्रीमत पर चलेंगे तो दुनिया की कोई भी इम्प्यूरिटी हमें प्रभावित नहीं कर सकती, या दुनिया की कोई भी आत्मा भी हमें प्रभावित नहीं कर सकती। फिर सर्व विकारों से मुक्त होना है, केवल काम विकार से मुक्ति की बात नहीं, तो क्रोध लोभ मोह अहंकार इन सब पर विजय पाना है। तो क्रोध में जैसे काम मोटे रूप से तो क्रोध को हम जीत लेते हैं ब्राह्मण बनने के बाद ना, दुनिया वालों जैसा गुस्सा नहीं रहता हमारा, लेकिन वही कि हम हाव भाव से अपने कर्म व्यवहार से थोड़ा सा शो करते हैं कि आप ये जो कर रहे हैं ना ये मुझे पसंद नहीं है, तो वो नाराजगी अपनी दिखाते हैं। तो बाबा कहता है नेगेटिव संकल्प आना भी, ये नेगेटिविटी आ गई ना हमारे मन में, तो नेगेटिविटी आना माना अपवित्रता। तो किसी भी आत्मा के प्रति, अब ड्रामा अनुसार हमें पता तो है ना कि वो आत्मा ऐसा क्यों कर रही है, सारे राज बाबा ने समझाए हैं। तो अगर हम उस राज को अपनी बुद्धि में रखते हैं तो हमें गुस्सा आएगा ही नहीं। पहली बात तो वो आत्मा मेरे जैसी हो नहीं सकती, क्योंकि हर एक आत्मा अलग अलग है, हर एक का पार्ट अलग अलग है। तो अगर वो मेरा कहना नहीं मान रही है, जो भी कर रही है अपने संस्कार अनुसार कर रही है, तो हमें समझ है तो हम कभी भी उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे, है ना। तो साक्षी होकर के किसी भी आत्मा के पार्ट को देखना वो बाबा ने हमें सिखाया। फिर चाहे बच्चे ही क्यों ना हो, बच्चों के ऊपर भी क्यों ज्यादा अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि मेरापन आ जाता है, मेरे बच्चे हैं, मेरी ही नहीं सुनते, मेरी ही बात नहीं मानते, आता है मेरापन। जब मेरापन आता है तब दुखी होते हैं, है ना, और बच्चों पर गुस्सा करते हैं। लेकिन ये समझना ही नहीं है ना कि मेरे बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं, हमारा फर्ज है उनको समझाना। वो समझते हैं तो ठीक, नहीं समझते हैं तो भी उनका भाग्य, वो आत्मा अपने कर्म लेकर आई है, उसका भी अपना भाग्य है। तो ज्ञान को यूज करेंगे तो गुस्सा आएगा ही नहीं। और हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हम तो शांति स्थापन करने वाले हैं ना बाबा के साथ, तो हम शांति देवा हैं, मास्टर शांति के सागर हैं, शांत स्वरूप आत्माएं हैं। हमें थोड़ी आग में घी डालने का काम करना है, हमें करना है आग में पानी डालने का काम। तो हम शुभ भावना, शुभ कामना हर आत्मा के प्रति रखें, तो मन में भी नेगेटिव विचार किसी के लिए ना आए। अब ऐसी आत्माएं दो चार तो हमारे पास होती ही हैं, जो गुस्सा पैदा करने के निमित्त बनती हैं, होती है नहीं होती, तो उनके प्रति हमें अपने आप को तैयार करना है कि वो आत्मा जब मेरे आसपास होगी तो भी मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, है ना। तो फिर हम कहेंगे कि हाँ, हमने उस पर विजय पाली। फिर लोभ के लिए जैसे बाबा कहता है, अगर हमारी हद की कामनाएं हैं, हद की इच्छाएं, तो वो भी काम विकार का अंश है। तो हम ऐसे दुनिया की बड़ी बड़ी चीजों को तो छोड़ देते हैं, ब्राह्मण बने तो वो संतुष्टता हमारे अंदर आ जाती है, जो जो दुनिया जैसा लोभ लालच तो नहीं रहता, लेकिन हद की चीजों में थोड़ी बुद्धि तो जाती है। ऐसा मकान तो होना चाहिए, ये सब साधन सुविधाएं तो होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड तो होना ही चाहिए, या जो भी, ये गाड़ी तो होनी ही चाहिए, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, या ऐसा मोबाइल होना चाहिए, जो भी। तो बाबा कहता है अगर आपके पास है तो बाबा मना नहीं करता है कि यूज नहीं करो, लेकिन कैसे यूज करो, कैसे यूज करो, अनासक्त वृत्ति से, कि वो साधन मेरी साधना की स्थिति से मुझे नीचे न ले आए, यानी उस साधनों में मेरी बुद्धि फंसे नहीं। नहीं तो हमारा योग, जैसे व्यक्ति योग तोड़ता है, ऐसे साधन भी हमारा योग तोड़ने के निमित्त बन जाते हैं। तो इसीलिए ये भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि कहां पदार्थों में भी हमारी बुद्धि तो नहीं जाती। नहीं तो दुनिया वाले तो उस रेस में लगे हुए ही हैं। आज भाग दौड़ की जिंदगी किसके लिए है, कहते हैं ना दुनिया में भाग दौड़ की जिंदगी है, तो किसके पीछे भाग दौड़ लगी हुई है, कंपटीशन है ना आपस में, इसके पास इतना तो मेरे पास उससे भी ज्यादा होना चाहिए, है ना। लेकिन हमारी वो रेस भले नहीं है अभी, लेकिन फिर भी जो भी हद की इच्छाएं हैं उससे भी इच्छा मात्रम अविद्या है, तो भी खुश और नहीं है तो भी खुश, हर हाल में राजी हो सकता है। बाबा कहते हैं 36 प्रकार का भोजन मिल रहा है तो भी खुश, और सूखी रोटी और गुड़ खाने को मिल रहा है तो भी खुश हो सकता है, दोनों ही स्थिति में समान। हाँ, तो ये बाबा कहता है कि ऐसे पेपर हमारे हो सकते हैं, क्योंकि प्रकृति भी हमारा पेपर ले सकती है, और उसमें अगर हम पास हो जाते हैं, अब भाई चाय पीने की आदत है मेरे को, रोज टाइम पे चाय ना मिले तो मेरे को सिर दर्द हो जाता है, सबको नहीं होता, ऐसे कोई कोई होते हैं, और वो का क्या पेपर आने वाला है उनके ऊपर, उनको चाय ही नहीं मिलने वाली है, और चाय नहीं मिलेगी और आपकी अवस्था ऊपर नीचे हो गई तो क्या हुआ, पास होंगे फेल होंगे। तो इसीलिए बाबा हमको तैयार करता है, पहले से सावधान करता है, डराने वाली बात नहीं है, लेकिन बाबा हमें सावधान करते हैं कि अचानक अगर कोई भी ऐसा पेपर आता है तो मेरी स्थिति अचल अडोल रहे, वो स्थिति मुझे हलचल में न लाए, तो हम उसमें पास भी डोनर होंगे। तो चाहे व्यक्ति हो चाहे प्रकृति हो, दोनों से ही हमें पास होना है। माया किसी भी रूप में आ जाती है। और फिर जैसे अहंकार की बात हम करते हैं, तो वो दुनिया वाले मैंपन तो नहीं होते हमारे अंदर, मैं फलाना हूं मैं फलाना हूं, एक अभिमान होता है ना, वो नहीं है। लेकिन जो बाबा ने हमें दिया उसका कई बार सूक्ष्म में, जिसको बाबा कहता है, उल्टा नशा आ जाता है ना, मैं भी तो कुछ हूं, मेरी विशेषता को समझते नहीं, मुझे जानते नहीं, थोड़ा नाम मान शान का वो आ जाता है मन के अंदर। तो अगर ऐसे सूक्ष्म में भी मैंपन आता है तो प्यूरिटी है इम्प्यूरिटी है, तो कौन जानता है हमें, हमारा नाम मान शान किसके दिल पर है। भगवान ने हमें देख लिया ना, भगवान ने हमें अपना बना लिया, भगवान हमें भगवान हमारे नाम की माला जपते हैं, भक्त भगवान को जपते हैं, और भगवान किसको जपते हैं, हमें जपते हैं। तो हमारा नाम किसके दिल पर है, फिर कितने ऊंचे ऊंचे सोमान बाबा ने हमें दिए। तो आत्माओं ने अगर मान नहीं भी दिया तो भगवान का सोमान कितना ऊंचा है हमारे लिए। ऐसे टाइटल दुनिया में किसी को भी मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते ना। और फिर दिल तख्त नशीन है, हम मुरली संडे को चली बाबा की, तीन तीन तख्त पे बाबा ने हमको बिठा रखा है। बाबा कहता है आप नीचे आते ही क्यों हो, परमात्मा तख्त नशीन हो और झूले दिए हुए हैं बाबा ने आपको, तो झूलों में झूलो, तख्त पर रहो, उससे ज्यादा और क्या चाहिए हमको। तो बेहद की प्राप्ति है, हद की प्राप्ति की बात नहीं। तो इसीलिए बाबा हमें कहता है अभिमान में नहीं सोमान में रहो। कभी भी अभिमान की निशानी बाबा बताता है कि उसको बहुत जल्दी अपमान की फीलिंग आ जाएगी, किसी की छोटी बात सुन नहीं सकते, किसी ने एक कहा और बस फिर देखो चार दिन गए, एक शब्द बोल दिया किसी ने, इतनी फीलिंग आ गई कि बस, तो इसको क्या कहेंगे, प्यूरिटी, वैर संकल्प चल गए ना बहुत, किसी ने एक शब्द बोल दिया मुझे और हम कहां गए। तो ये अपनी चेकिंग, सूक्ष्म चेकिंग चाहिए ना, कि वो अंश वंश भी तो नहीं है हमारे अंदर। और फिर प्यूरिटी माना रियलिटी, रियलिटी माना सच्चाई सफाई, जो अभी हमारा अव्यक्त इशारा चल रहा है सरलता के ऊपर। तो अंदर बाहर साफ होना, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बोलते हैं वैसा ही हम करते हैं। ऐसे नहीं कलयुगी मनुष्य जैसे होते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। तो बाबा को सच्चाई सफाई पसंद है, इसलिए बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी, या सच तो बिठो नच। तो वो सच्चाई हमारे अंदर हो कि भगवान से भी सच्चे और आपस में भी हम सच्चे ना, एक दो के प्रति भी हमारे मन में ऐसा, जिसको लोग कपट कहते हैं ना, छल कपट मन में रखना, वो सरलता नहीं होती। सरल आदमी अंदर बाहर एक जैसा होता है, तो वो भी प्यूरिटी है। तो हम देखें हमारी प्यूरिटी की स्टेज हमने कहां तक लाई है, क्या कमी है हमारे अंदर। क्योंकि हमें अगर एयर कंडीशन, आज बाबा ने कहा ना एयर कंडीशन में आना है, सूर्यवंशी राजघराने में आना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो ये प्यूरिटी की स्टेज हमारी होगी, तो हमारा एयर कंडीशन में आना पक्का है। तो हम वो सूर्यवंशी राजघराने में आने के अधिकारी बनेंगे। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी, आप डबल डॉक्टर हो, तो आपने बहुत सुंदर रीति से, बहुत अच्छी तरह से प्यूरिटी की पर्सनालिटी, अनेक रीति से वैरायटी दवाई के रूप में और स्वादिष्ट भोजन, पौष्टिक भोजन के रूप में हमको पिरोसी। तो हम सभी दीदी जी का बहुत बहुत दिल से अभिवादन और धन्यवाद करेंगे। और जब प्योरिटी की बात बताई तो ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है, और परमात्मा ने ही डायरेक्ट हमें प्योरिटी सिखाई है। तो साथ में जब प्योरिटी हम धारण करते बाबा की श्रीमत के अनुसार तो 21 जन्म की हम डायरेक्ट प्राप्ति करते हैं। साथ में दीदी जी ने बताया कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान है तो दूसरों का प्रभाव भी हमारे पर नहीं पड़ सकता है। साथ में दृष्टि वृत्ति भी कैसी होनी चाहिए, पवित्र। तो जब हमारी दृष्टि वृत्ति पवित्र है तो हम पतित आत्मा को भी परिवर्तन कर सकते। इसके लिए हमारी दादियों का एग्जाम्पल बहुत सुंदर रीति से बताया। फिर चेहरे और चलन से भी सेवा करनी है, और जब हमारी प्योरिटी परफेक्ट है तभी हम चेहरे और चलन से सेवा कर सकते हैं, झलकती है। फिर मनसा वाचा कर्मणा, तीनों रीति से पवित्रता। फिर गुणों की सुंदरता, वो व्यवहार में कैसे आए, वो भी एक प्योरिटी है। अंदर बाहर साफ, सच्चाई सफाई, किसी के लगाव में झुकाव में आना, ये इम्प्योरिटी है। नाम मान शान, हद की कामना, जहाँ अभिमान आता है तो अपमान आता है, सब इम्प्योरिटी है। तो किसी भी आत्मा के लगाव में आना, बार बार आत्मा की याद आना, है ना, ये भी इम्प्योरिटी है। तो उसको प्योरिटी नहीं कहेंगे, तो कहाँ देह भी अपनी याद नहीं आनी चाहिए। तो प्योरिटी में खास बताया कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो कंपनी और कंपेनियन एक बाबा, पूरा नष्ट मोह, सब कुछ बाबा का, बिल्कुल संशय बुद्धि नहीं होना चाहिए। बाबा किसी को भी निमित्त बना के हमारा काम करता है, तो ऐसी पवित्र आत्मा को बाबा की मदद मिलती है। और लास्ट में संपूर्ण पवित्रता में खास तो आज की मुरली के आधार पर दीदी ने बोला कि राजाई पद से वंचित रह जाएंगे अगर हमारी प्योरिटी नहीं है। तो सूर्यवंशी की टिकट लेनी है तो क्या करना पड़ेगा। हाँ, तो देखो कितनी दवाई और वैरायटी भोजन दोनों दीदी जी ने सबको अलग 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 रीति से बहुत सारी बात डिटेल में बताई। तो आज इसका हम चिंतन करेंगे साथ में। तो दीदी जी फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम शांति।
I need.